ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். ठीक से आराम हुआ? हाँ? सुबह उठकर 5 मिनट स्व चिंतन का अभ्यास किया, अमृत वेला योग भी किया, है ना? राजयोग के प्रथम सत्र में कल आप सभी ने स्वयं का सही परिचय प्राप्त किया। अब आपको स्पष्ट है कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। प्रथम लेसन से 3 अभ्यास अगर नियमित रूप से प्रतिदिन आप करते रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बहुत जल्दी बन सकेंगे। पहला अभ्यास आत्मस्मृति में रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते सुनते माना कर्म करते हुए ये अवेयरनेस मन में रहे कि मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अविनाशी चैतन्य शक्ति। हमें स्पष्ट हो कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि से देखना, दिन भर में जिससे भी मिलें, बातचीत करें, जिनको भी देखें, हम उनके मस्तक में देखें कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। मतलब हम एक दो को रूहानी दृष्टि से देखें, देह दृष्टि से नहीं। हमें स्पष्ट है कि शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। शरीर स्त्री है या शरीर पुरुष है, मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस रूहानी नजर से देखना है। और तीसरा अभ्यास ये करना है, आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करना। जो भी कर्म हम करें सुबह से लेकर रात तक, आत्मधर्म में स्थित होकर करें। देह धर्म भिन्न भिन्न है। देह धर्म से कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर हम सभी आत्माओं का स्वधर्म, आत्मधर्म शांति और पवित्रता है। आत्म परिचय के प्रथम लेसन में आप सभी ने ये समझा है कि हरेक आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचर से शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। हम सबकी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज हैं। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। मुझे इन गुणों का स्वरूप बनकर हर कर्म करना, मुझे प्रत्येक कर्म शांति से, शुद्धि से सोच समझ कर ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ से, अधीरियता से नहीं करना है। अगर ये 3 अभ्यास प्रतिदिन बार बार करते रहेंगे तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे। जो बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, कर्म कॉन्शियस बन गए हैं, बिजनेस कॉन्शियस बन गए हैं, मनी कॉन्शियस बन गए हैं, हर कोई अपने आप को जानता है कि हम कहां कॉन्शियस हो गए। हम अपनी स्मृति को बदल सकते हैं। तो प्रथम अभ्यास राजयोग का, सोल कॉन्शियस बनना, स्व में स्थित होना। प्रथम खुद में फोकस होना। पर योग शब्द 2 सत्ता के मिलन को सिद्ध करता है। योग मीन्स कनेक्शन, रिलेशन। तो हमें किससे योग लगाना है, कहां मन बुद्धि जोड़ना है, परमात्मा की याद में कैसे एकाग्र होना है। हमें योग परम शक्ति परमात्मा से लगाना है, हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ताकि हम उनसे पूर्ण प्राप्ति कर सके। पर उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। जिसको हम सदियों से ढूंढते रहे हैं, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, परमेश्वर, गॉड, खुदा कहकर याद करते रहे हैं। ये भी हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम, ऊंचे से ऊंच, हाईएस्ट ऑन हाई, अल्टीमेट ऑथोरिटी एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं, अनेक मते हैं। सारी दुनिया की बात छोड़े, यहां आप जितने बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं परमात्मा कौन है, क्या सबसे एक जवाब आएगा? नहीं। हरेक अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, विश्वास अनुसार बताएंगे। जिनको श्री राम में श्रद्धा है वो कहेंगे श्री राम ही भगवान है। जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहते हैं श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य फैला है नेचर को ही गॉड समझते, कुदरत को ही भगवान समझ रहे, कोई आत्मा को परमात्मा समझते, आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए कई अपने आप को भगवान कहलाते भी, कोई सब में परमात्मा है ऐसी भावना रख, तेरे में, मेरे में, कण कण में, सब में भगवान है ऐसी भावना रखते। एक ही परमात्मा के बारे में अनेक मते हैं, अनेक मान्यताएं हैं। सिद्ध है परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते। ये अनेक मते ही स्पष्ट करती हैं कि हम सत्य नहीं जानते। परमात्मा का सत्य परिचय परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं प्रकट होता है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं और अपना सत्य परिचय देते हैं। बल्कि सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स का ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा को हम कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम परमात्मा को कहते हैं हमें अज्ञान अंधकार से सद्ज्ञान के प्रकाश में ले चलो। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपने सत्य परिचय की सही परिभाषा हम आत्माओं को जो बताई है, पहले वो परिभाषा मैं आपके सामने रखूंगी कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते। परमात्मा के सत्य परिचय की क्या डेफिनेशन है, क्या व्याख्या है, जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि वास्तव में परमात्मा कौन है, वो कौन से मापदंड हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकें। मैं 5 बातें आपको बताऊंगी। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्वमान्य हो, उनका सही परिचय वही हो सकता है जिसे विश्व के सभी धर्म मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति, समाज के पिता नहीं। परमात्मा समग्र विश्व की आत्माओं के पिता है। समस्त विश्व की, सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता है। इसलिए कुछ माने दूसरे न माने उसको परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय उसे ही हम कह सकते हैं जिससे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करे। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हों। हम जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है, जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं, जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है। 5 तत्वों से शरीर बनता है। जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकते। हम कर्म बंधन में बंधते जाते हैं। जो जन्म लेते हैं देह संबंध में बंधते। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बनता है। वो किसी का बेटा है, भाई है, पुता है, संबंध में बंधता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। करता है वो ही भोगता है, सुख दुख के बंधन में बंधता है। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के कर्म के प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त सदा स्वतंत्र कहते। और हम सभी भक्ति में भी परमात्मा से सदा क्या मांगते, क्या मांगते रहते? हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें जन्म मरण के फेरे से छुड़ाओ। हम सर परमात्मा से मुक्ति मांगते रहे हैं। अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सभी बंधनों से सभी लेपों से सभी प्रभावों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है, जो स्वयं ही परम है, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक सेठ स्वामी बन सके। वो स्वयं ही परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु है, उनके ऊपर और कोई नहीं। इसलिए हम कहते हैं पिताओं के पिता है, शिक्षकों के शिक्षक, गुरुओं के गुरु, पतियों के पति, नाथों के नाथ उससे कहा जाता है। वो ही फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी है, उनके ऊपर और कोई नहीं। चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा परम है, अपने गुणों में कर्तव्यों में स्थिति में, जिनके गुण कर्म स्थिति बदलते रहते हों, उससे परमात्मा नहीं कह सकते। ऐसे नहीं आज परम है धीरे धीरे मध्यम अधम होते जाएंगे, कल आपने प्रथम लेसन में समझा है कि हम आत्माओं के गुण कर्म स्थिति बदलते रहते हैं। हम सभी आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है, पर प्रकृति और समय के संसर्ग में आकर आज हम सभी आत्माएं पतित दुखी अशांत बन गए। हम आत्माओं के गुण कर्म स्थिति बदलते रहते हैं, परमात्मा अपरिवर्तनशील परम सर्वोच्च एक रस। इसलिए लोग कहते भी हैं कि परमात्मा को पहचानना फिर भी आसान है, क्योंकि वे सदा अपने परम गुणों में स्थित रहते, सदा प्यार के सागर है, सदा कल्याणकारी है, सदा पावन है। और ही लोग कहते हैं मनुष्य आत्माओं को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं हर घड़ी अपना रंग बदलती रहती। और पांचवी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता है और सदा दाता है। सर्व ज्ञाता है माना ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है, जो सारे ही यूनिवर्सल ट्रुथ्स सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत तक आलोक परलोक का राज बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं अगम निगम के भेद खोले, ये सारे मूल सत्यों का ज्ञान परमात्मा कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा के लिए कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है। हम मनुष्य आत्माओं के लिए हम कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा सदा सर्वज्ञ है, इसलिए हम उसको सदा जागती ज्योत कहते, और वे सदा दाता है। परमात्मा सदा दाता है, देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। इसलिए हम उसकी महिमा गाते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, सदगति दाता, मुक्ति दाता, हम उसकी महिमा गाते हैं ना, वो सदा दाता है। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है, है? है? नहीं, हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है। बेशक हम पहले दाता थे, देवता थे, भारत देव भूमि कहा जाता है, देवी देवता मीन्स देने वाला, और इसलिए उनकी निशानी भी दिखाते हैं। हर देवी देवता के हाथ कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते? दाता वरदाता, देने वाला हाथ दिखाते। आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज तो क्या बन गए हैं? लेवता। देवता नहीं है, क्या बन गए हैं? लेवता, है ना। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, निस्वार्थ भाव से हम कहां कुछ कर पाते। परमात्मा सदा दाता है। परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते? हम तो भक्ति में भावना से अनेकों को परमात्मा समझते रहे, अनेकों में ईश्वर की भावना रखते रहे, पर सत्य क्या है? ये पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? नहीं। तो प्रथम सत्य बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके प्राप्त कर ले। परम आत्मा, एक परम आत्मा अनादि अविनाशी है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते। इसलिए जन्म मरण के चक्र में आने वाले कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। सिंपल बात, एक बच्चा बेटा पिता जैसा रूपवान गुणवान ज्ञानवान विद्वान धनवान बलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है और रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इस एक सत्य को न समझने के कारण हमने अनेकों को ईश्वर समझ लिया, अनेक अवतार बता दिए। अंडरस्टूड है दूसरी बात, जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही ज्ञान न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने बैठ जाते। ये महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्पष्ट चिंतन में लिखा है कि जो छोटे जादूगर होते हैं वे छोटे छोटे जादू करते हैं, परमात्मा महान जादूगर है, वे अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते हैं। वे हमारे पूरे जीवन को श्रेष्ठ बनाते। तो ये महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि परमात्मा की याद से ही, योग साधना से ही तो वे महान बनते हैं। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि पर आकर अपने अपने धर्म के स्थापना का कार्य किया है, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, इतिहास तो जानते हो ना। चाहे मुस्लिम इस्लाम के अब्राहम हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, गुरु नानक जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, ये जो भी धर्म स्थापक हुए हैं वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं हैं। खैर, इन सभी धर्म स्थापकों ने स्वयं ही स्पष्ट कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम तो उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोअर्स होते हैं जो पीढ़ियों के बाद अपनी भावना अपने धर्म स्थापक में सीमित कर देते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात, बहुत निष्पक्ष भाव से, तटस्थता से समझनी है हमें कि हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, अनेक, जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री लक्ष्मी नारायण हैं, श्री राधे कृष्ण हैं, श्री राम सीता है, चाहे अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, जिन भी देवी देवताओं के हम पूजा करते हैं, मानते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही है ना। इन देवी देवताओं को सभी धर्म की आत्माएं मान्य नहीं करती, परमात्मा तो उनको कहेंगे ना जिनको सभी धर्म की आत्माएं मान्य करें। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते। हम इन देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, इवन कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं सुनाते हैं, जीवन गाथाएं बताते हैं। हम इन देवी देवताओं को अनेक देह संबंधों में बंधे हुए बताते हैं। इनके माता पिता, गुरु, शिक्षक, सखा, बंधु, पत्नी, बच्चे संबंधों में बंधे हुए बताते। हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखा कि वे आए ही, अवतरित हुए ही असुरों का संहार करने, आततायियों को मुक्त करने, दुखियों को सुखी बनाने। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते और उनके श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप इन देवी देवताओं को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दैवी राजाई करते हुए बताते। इसी की यादगार आज तक इन देवी देवताओं की मूर्तियों को कितने न मूल्यवान हीरे जवाहरात, सोने चांदी के वस्त्र अलंकार आभूषणों से श्रृंगार किए जाते, ये उनके स्वर्गीय सुखों की निशानियां। हर देवी देवता के मस्तक पर ताज दिखाते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं, ये राजाई की निशानी। तख्त और ताज राजाई की निशानी है। तो जो भोक्ता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का हम प्रयोग करते कि वे अजन्मा है, अकर्ता है, निराकार, निरंजन, कर्मातीत हम उससे बताते हैं। तो ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसे विश्व के सभी धर्म की आत्माएं मान्य करती हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, स्वयं भू जिसको कहा गया है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? है कोई स्वरूप? तो देखो, मुंझने की बात नहीं। परमात्मा को जानना, पहचानना बहुत आसान है, परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद करिए, परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा भी है तो आत्मा न, चैतन्य शक्ति, अपने गुण और कर्मों से परम ऊंचे से ऊंचे है, इसलिए परमात्मा कहते। पर है तो ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा रूप से परम नहीं, अपने गुणों और कर्तव्यों से ऊंचे से ऊंचे। जैसे हम किसी को महात्मा कहते, अपने आप को साधारण मनुष्यात्मा कहते। अब महात्मा का अर्थ ये तो नहीं ना कि महात्मा माना इतनी मोटी आत्मा। हम साधारण मनुष्य आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना। हरेक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पर जो आत्मा गुण और कर्म से महान है उसको हम महात्मा कहते। जो गुण और कर्म से दिव्य है उसे देवात्मा कहते। जो गुण और कर्म से पतित भ्रष्ट है उसे पापात्मा कहते हैं। पर है तो हरेक ज्योति बिंदु आत्मा, इसलिए परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, गुणों के सिंधु है। और परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है। चित्र में आप देखिए, ज्योति बिंदु परमात्मा को हिंदू भाई बहने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध, देवों के देव त्रिदेव रचयिता के रूप में ज्योतिर्लिंगम की भक्ति में पूजा करते। श्री रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए बताते, ज्योतिर्लिंग का पूजन करते बताते। वृंदावन गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी को भी शिव के आगे नमन करते हुए बताया है। एक और विवेक से समझने की बात आपको बताएं, आपने भी ऐसे कई चित्र देखे होंगे, स्वयं शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में दिखाया है। देखे हैं ऐसे चित्र, आगे शिवलिंग है और शंकर जी को तपस्वी मुद्रा में बताया है। शंकर जी को तो कहते ही है तपस्वी जोगी, तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? किससे योग लगा रहे हैं? जरूर उनसे ऊपर कोई परम शक्ति है जिसके ध्यान तपस्या में वो बैठे हैं। इसलिए प्राचीन भक्ति एक निराकार की होती थी, ज्योतिर्लिंग जिसका यादगार प्रतीक भक्ति में बनाया गया। ये तो मध्य युग में जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं बॉडी कॉन्शियस बनते गए, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में मन नहीं लगा सके, तो साकार देवी देवताओं की भक्ति उपासना शुरू हुई। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है, वो एक परमात्मा को ही मानते हैं और कहते हैं अल्लाह नूर है, मीन्स परमात्मा ज्योति स्वरूप है। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। मक्का हज करने जाते हैं, उनकी जो वहां काबा की इमारत है, वहां ज्योतिर्लिंग आकार का प्रतीक अभी भी लगा हुआ है जिसे संगे अस्वद कहते हैं, और आज भी वे उनको रिस्पेक्ट देते हैं, चूमते हैं। जापान के बौद्धिस्ट भाई बहने शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं, 3 फीट दूर 3 फीट ऊंचे स्टैंड पर शिवलिंग आकार का प्रतीक रखते हैं और उस प्रतीक से ध्यान केंद्रित करते, उस प्रतीक को चिनकान शेकी कहते हैं जैपनीज लैंग्वेज में। हिंदी में उसका अर्थ है शांति दाता। आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, तपस्या करते हुए दिखाते हैं, ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं, तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम शक्ति परमात्मा जिससे हर आत्मा को अवेयरनेस जागृति प्राप्त होती। जीसस क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है गॉड इज लाइट, खुद के लिए कहा है आई एम सन ऑफ गॉड, अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। इसलिए मोमबत्ती ज्योत जलाते हैं और प्रेयर करते हैं। गुरु नानक जी ने एक ओमकार निराकार, एक सतनाम अकाल मूरत की ही महिमा गाई, तो विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म हैं, उन धर्मों के जो स्थापक हैं, उन सबका मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार, हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहते हैं, उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से, इसलिए आज अपनी बुद्धि में ये स्मृति ऐड करेंगे कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और एक सिंपल बात कि एक जानवर का पिता जानवर होता है, एक पंछी का पिता पंछी होता है, एक मनुष्य का पिता मनुष्य होता है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम भी नहीं। हमारे नाम शरीर से है ना। अगर मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा ये नाम भी समाप्त हो जाएगा ना। मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा। हमारे नाम शरीर से, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। गॉड इज ट्रुथ, थे हैं और सदा रहेंगे। शिव मीन्स कल्याणकारी, सुंदर माना सदा पावन है। उनके अनेक भक्ति में गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, भोलानाथ, पशुपतिनाथ, उनके अनेकानेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि वो गुणों का सागर है। कल्याण के इतने कर्तव्य किए हैं तो यादगार अनेक नाम, अनेक उनके बने हैं ना स्थान। पर हमें अनेक नामों की लिस्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ईश्वर के गुण और कर्तव्य से है। हम उनके मूल नाम को याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से हम यहां शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स बाबा माना पिता, बाबा माना पिता, गॉड फादर कहते हैं ना। बाबा मीन्स पिता। बाबा माना कोई साधु बाबा की बात नहीं है, परमात्मा हमारा पिता। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात, हमारी हाईएस्ट आइडेंटिटी यही है कि हम परमात्मा के बच्चे। हमारे लिए सबसे खुशी और गर्व की बात है कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। है खुशी? देखो कोई नहीं बोलते। देखो प्रैक्टिकल, देखो कितने आश्चर्य की बात है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और किसी को खुशी नहीं है। क्यों? देहभान में आ गए हैं ना। तो देह के माँ बाप पोस्ट पोजीशन की खुशी है कि मेरे पिता ऑफिसर है, मिनिस्टर है, उद्योगपति है, एमएलए है, वो अभिमान है, वो खुशी है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। यही तो हमारी ऊंचे से ऊंची आइडेंटिटी। ऐसे कल्याणकारी सुखदाता जिसकी महिमा भक्ति में हम कितनी गाते। चित्र में बताया है कि परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति के सागर हैं, इटर्नल सोर्स है और दाता है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, अखुट भंडार और सदा दाता परमात्मा के हम बच्चे। सोचिए हम कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। पिता सागर है, दाता है और उनके हम बच्चे आज मंगता क्यों बन गए। सोचिए, अक्सर भक्ति में हम परमात्मा को याद करते हैं पर वास्तव में हम क्या करते रहते। कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं पर करते क्या है, मांगते ही रहते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम याद नहीं करते थे, तुम तो फरियाद ही करते रहते थे। एक इटर्नल फाउंटेन, एक फव्वारा, अपने आप शीतल जल की फुहारें बहाता रहता है, अपने आप शीतलता हमें मिलती है। हम फवारे के समीप जाते हैं, हमें शीतलता का अनुभव होता है। हम अग्नि के समीप जाते हैं, गर्मी का अनुभव होता है। हम सूर्य के सन्मुख होते हैं, हमें लाइट माइट मिलती है। मांगने की बात नहीं है कि हे फवारा शीतलता दो, हे अग्नि गर्मी दो, हे सूर्य प्रकाश दो, नहीं, वो ऑलरेडी दे ही रहे हैं। ये प्रकृति के सोर्सेस, परमात्मा प्रकृति के भी मालिक, रचयिता, परम चैतन्य शक्ति हैं, वो सदा दे रहे हैं। वो है ही एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, लव, पावर, नॉलेज, ब्लिस। वो तो है ही सागर, भंडार, दाता, दे ही रहे हैं। खुद में सोचने की जरूरत है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। समझ गए ना, हम उनके समीप नहीं है, हमारा उनसे कोई रिलेशन कनेक्शन नहीं रहा, हमारी बुद्धि उनके सन्मुख नहीं है, हम विपरीत बुद्धि बन गए, तो कहां से प्राप्ति। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, अखुट भंडार, दाता परमात्मा, कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। ये अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार मनुष्य गुरु भी करते रहते हैं, परमात्मा वो कार्य नहीं करते। परमात्मा कौन सा कर्तव्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। वो है वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं, तब सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हमें पतित से पावन बनाते। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते। आज हम कहते हैं ना कि इंसान है पर इंसानियत नहीं रही, हम हैवान से भी बदतर बन गए हैं, ऐसे कहते हैं ना, असुर पतित बन गए। परमात्मा हमें एबनॉर्मल से नॉर्मल, नॉर्मल से सुपर नॉर्मल, मनुष्य से देवता बनाते हैं और सारे विश्व को स्वर्ग बनाते। ये है परमात्मा का दिव्य कार्य। विश्व परिवर्तन, विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते, और ऐसा कार्य परमात्मा जादू मंत्र से नहीं करते, छुमंत्र से नहीं करते। ऐसे नहीं है भगवान आएंगे और हम पावन बन जाएंगे। फिर तो हर कोई यही सोचेगा कि भल पाप करते रहो, भगवान आएगा और पावन कर देगा। ऐसा नहीं है भाइयों और बहनों, संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, परमात्मा इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो वे भी कर्म सिद्धांत के अनुसार कार्य करते। परमात्मा का कार्य है, वे हमें आकर सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं, हमें योग सिखाते हैं ताकि हम आत्माएं शक्तिशाली बने और पावन बने। अज्ञानता के कारण इंसान पाप करता है, इसलिए सत्य ज्ञान देते हैं ताकि हम समझ सकें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, और जो करना चाहिए वो ही हम करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें। वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर योग से प्राप्त हो। इसलिए परमात्मा सत्य ज्ञान सहज राजयोग द्वारा हमें पतित से पावन बना। उस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पावन बनना है और हमारी पवित्रता के बल से विश्व पावन बनता है। हम कह सकते हैं परमात्मा ज्ञान, योग और पवित्रता के बल से विश्व परिवर्तन करते हैं। वो सत्य ज्ञान आप यहां सुन रहे हैं, ये कोई ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है भाइयों और बहनों। परमात्मा का सत्य ज्ञान सार रूप में आप सुन रहे हैं, और ऐसा विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। कब आते हैं परमात्मा? परमात्मा सृष्टि पर कब अवतरित होते? हर एक भारतवासी जानते हाँ कौन सा श्लोक बोलते हैं। देखो हर एक भारतवासी जानते कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ये आप जानते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना कब, जब जब धर्म ग्लानी होती है मीन्स एग्जैक्टली कब अति धर्म ग्लानी होती, कौन से युग में? कलयुग। कलयुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय, परमात्मा कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में सृष्टि पर आते हैं। आपका एक लेसन है ना सृष्टि चक्र पर, कॉल ऑफ टाइम, इसमें और विस्तार से आपको बताएंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। भाइयों और बहनों, वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संधिकाल कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जब स्वयं परम पुरुष परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, यहां कोई क्रियाकांड द्रव्य यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा आकर ज्ञान यज्ञ रचते, जो कलयुग के नर नारी इस महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश पर खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, वे आने वाली सतयुगी दुनिया के लायक देवी देवता बनेंगे। परमात्मा का ये संदेश है, आदेश है, कि अगर कलयुग को सतयुग बनाना है तो हमारे पवित्र योगी जीवन का सहयोग चाहिए, क्योंकि हम करेंगे तो हम पाएंगे। इसलिए आप सबको यहां आमंत्रित करके हमें यही शुभ संदेश देना है कि वर्तमान समय बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, स्वयं परमात्मा आकर सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। उस ज्ञान और योग की शिक्षा से हमें बुराइयों को खत्म करना है, विकारों को स्वाहा करना है, अपने शेष वर्तमान जीवन को हमें पवित्र श्रेष्ठ दिव्य बनाना है, तो आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने योग्य हम बन सकेंगे। तो कौन कौन जाना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि आपको फिर निर्णय करना है ना। हाँ, आप सबको इसलिए संदेश दे रहे हैं कि हर कोई सतयुग के मालिक बन सकते हैं, जो अभी सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में परमात्मा के साथी और मददगार बनेंगे, वो उस नई दुनिया के मालिक बने। और लास्ट बात कि परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, आते हैं। खुदा मीन्स जो खुद आता है, जो खुद आता है, इसलिए उसको खुदा कहा जाता है। अगर परमात्मा इस सृष्टि पर कभी आते ही ना हो, हम आत्मा उससे मिलते ही ना हो, हमने कभी उनसे सुख पाया ही ना हो, तो हम उससे क्यों याद करते? जरूर हमने उनसे कभी सुख पाया है, तब तो हम उनको याद करते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, मीन्स वे इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जरूर कहीं और रहते हैं, तब तो सृष्टि पर अवतरित तो होते हैं। आप यहां हाजिर हैं, उपस्थित हैं, बैठे हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी कि आप आएंगे या आते हैं। आप है ही है ना, हाजिर ही हैं। परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते? जरूर परमात्मा कहीं और रहते हैं। कल आपने ये समझा है कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, ये दुनिया भी हमारे लिए कर्म क्षेत्र है। कहते हैं ना, संसार कर्म क्षेत्र, ये हमारा घर नहीं है। हमारा असली घर भी इस दुनिया से दूर परमधाम है। तो जब ये दुनिया हमारा घर नहीं है, तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? परमात्मा का भी असली घर परमधाम है, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, ब्रह्मलोक जिसे कहते। इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर, प्रकृति का एक और छठवां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। परमात्मा और हम आत्माएं उस ब्रह्मलोक के निवासी। इसलिए हम भी अपने लिए कहते हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हम परम धाम से आए हैं पार्ट प्ले करने। कलियुगंत ये साइकिल पूरा होता है, हमें वापस अपने घर जाना होता है। परमात्मा के लिए भी हम कहते हैं ऊपर वाला, कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा। कहते हैं कि नहीं कहते? एक दो को याद कराते हो कि नहीं कराते? कराते हैं तो कोई गलत करके, कोई गलत करके भी, झूठ मूठ करके इस दुनिया की कोर्ट से छूट जाते हैं, तो भी हम कहते हैं कि तुम यहां तो झूठ मूठ करके छूट गए, पर ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं छूटोगे। कहते हैं कि नहीं? परमात्मा के लिए हम कहते हैं ऊपर वाला, यहां वाला नहीं, ऊपर वाला। परमात्मा परम धाम के निवासी। संगम युग कलियुग अंत परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमें सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं। पति से पावन बनाते हैं। यह है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताया है। ऐसे कल्याणकारी, सुखदाता, शांतिदाता, सदा पावन हम आत्माओं के अविनाशी पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, बताइए कितना याद करना चाहिए। पर क्या हम इतना याद करते हैं? नहीं करते। देखो, नहीं करते। हम देह भान में आते हैं और देह के मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं, जिनसे थोड़ा ही सुख बल्कि दुख ही मिलता रहता है, उन देहधारियों को याद करते रहते हैं और उस कल्याणकारी पिता को भूल जाते। इसलिए पहले खुद का पाठ पक्का करना है। जब खुद को आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिक अविनाशी पिता शिव बाबा की याद भी हमें सहज निरंतर रहेगी। तो हम 5 मिनट बहुत प्यार से पिता को याद करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। अलर्ट होके बैठेंगे, कमर सीधी रखें, कमर सीधी रखें, बहुत खुशी और गौरव से हमें उस पिता को याद करना है। इसलिए कोई भी सिर झुकाकर आंखें बंद करके नहीं बैठेगी। सिर तो कब झुकाना पड़ता है, इंसान माथा नीचा करके कब खड़ा रहता है? कुछ गलत करे तो ना। परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कार्य है। बहुत खुशी और उन्नत मस्तक से हम उस पिता को याद करेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। याद मन और बुद्धि से करना है, इसमें आंखें खोलने बंद करने की बात ही नहीं है। आंखें नेचुरल खुली रहती हैं, इसलिए आंखें खुली रखते हुए बैठेंगे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। हम मन की आंख से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देखेंगे, बुद्धि से समझ पूर्वक प्यार से हम उस पिता को याद करेंगे। हमें मन ही मन साइलेंस में बैठकर उस पिता को याद करना है। मुख से बोलना नहीं है, आवाज नहीं करना। कैसे याद करना है, कैसे परमात्मा चिंतन करना है, मैं सजेशंस देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में। जो थॉट मैं दूं, मन ही मन रिवाइज करी। सिर्फ शब्द रिपीट मन में नहीं करने हैं, अर्थ समझ कर रिवाइज करें, रियलाइज करें। उस याद प्यार अनुभव में एकाग्र होना उसे योग कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाए। साक्षी बन जाए। स्वयं के मस्तक बीच त्रिकुटी में खुद के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं। शरीर धारण कर इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र। मेरा असली घर शांति धाम है। जिस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है, अखंड लाल ज्योति ब्रह्म तत्व जहां छाया हुआ है। मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा इसी परम धाम के निवासी है। मैं ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा की अति प्रिय मेरे कल्याणकारी परमपिता आज आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मेरा जीवन धन्य बन गया है। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया। मेरे कल्याणकारी शिव पिता आपके सत्य ज्ञान को, आपके सर्व गुणों को, आपकी समस्त शक्तियों को मुझे भी अपने जीवन में धारण करना है। आप शांति के सागर, शांति दाता है। आपकी संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हो। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं स्वयं शांत स्वरूप बनूंगी, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन प्यारे शिव बाबा आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, आपके साथ का अनुभव करती हूँ, शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और नशा है, खुशी है, मैं आत्मा आपकी अमर संतान हूँ। मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, मैं स्वयं एक शक्ति हूँ। ओम